हरे कृष्णा। सभी भक्तों का फिर से स्वागत है हमारे आज के बुधवार के कार्यक्रम में। आज हम दूसरे अध्याय के नौवें श्लोक पर हैं। अब तक अर्जुन उवाच इस अध्याय में चल रहा था। अर्जुन जिन्होंने अपनी शरणागति व्यक्त की है कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव उस श्लोक से, और पिछले हफ्ते हमने जो श्लोक लिया आठवां, जिसमें अर्जुन अपनी शरणागति के साथ अपनी विरक्ति व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि बिना विरक्ति के शरणागति का कोई अर्थ नहीं। कोई व्यक्ति यदि किसी के शरणागत है तो एक सबसे महत्वपूर्ण लक्षण उसकी शरणागति का होना चाहिए विरक्ति या वैराग्य, निरासक्ति। अब पिछले श्लोक में अर्जुन ने अपनी विरक्ति कैसे व्यक्त की? कौन थे पिछले हफ्ते? पिछला श्लोक किसको याद है? हाँ, इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग, केवल उतना ही। पिछले श्लोक में अर्जुन ने क्या कहा? हाँ, कौन सा? सुराणाम राज्यम आधिपत्यम, कि मुझे यदि स्वर्ग का भी राज्य मिल जाए, भूमौ, ये भूमि का राज्य तो कुछ नहीं, ये हस्तिनापुर क्या है? अब देखिए, भूमि के राज्य की तुलना यदि सुराणाम राज्य, यदि सुरों के राज्य से अर्थात देवताओं के राज्य से की जाए, तो ये जो पृथ्वी का राज्य है, ये पृथ्वी देवताओं के लोगों के सामने झोपड़पट्टी है। जैसे लोग बंबई में रहते हैं, मलाबार हिल ये एरिया में, ये सब आलीशान एरिया, और फिर बंबई में धारावी में भी रहते हैं, तो जो धारावी में रहता है वो भी बोल सकता है मैं भी बंबई में रहता हूं, और जो मलाबार हिल में रह रहे हैं वो भी बोलते हैं कि हम बंबई में रह रहे हैं। तो वैसे देवता भी भौतिक संसार में है, हम भी भौतिक संसार में है, दोनों में अंतर क्या है? धारावी में और मलबार हिल में जो अंतर है। तो अब यहां पर अर्जुन किसके सामने देवताओं के लोक के बारे में बोल रहे हैं? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सामने, जो कि गोलोक धाम के निवासी है। तो देवलोक गोलोक धाम के सामने धारावी है, और ये गोलोक धाम के अधिपति अर्थात सबके अधिपति, ये जितनी भी धारावियां हैं इन सबके भी अधिपति वही है। तो उनके सामने अर्जुन प्रस्तुत कर रहे हैं कि मुझे वो भी अधिपत्य नहीं चाहिए, मुझे देवताओं का भी राज्य नहीं चाहिए। और अर्जुन ने ये जो कहा पिछले श्लोक में कि मुझे देवताओं का भी राज्य नहीं चाहिए, ये अर्जुन केवल ऐसा नहीं कि बोलने के लिए बोल दिए, अर्जुन ने सिद्ध भी किया था। अर्जुन ने महादेव, देवों के महादेव शिव जी, इनको प्रसन्न कर दिया था युद्ध कौशल से, मन एक दृष्टिकोण से परास्त कर दिया था। तो सोचिए, अब महेश धाम जो है, शिवलोक जो है, वो देवलोक से भी ऊंचा है, वो भौतिक संसार में नहीं आता है। तो महादेव को जिन्होंने परास्त किया, वो जब बोल रहे हैं कि मुझे वो भी राज्य नहीं चाहिए, तो केवल बोलने के लिए नहीं है, उन्होंने कर दिखाया था जीत कर। अर्थात इससे यह समझ में आ रहा है कि शरणागति जो है वो केवल बोलने के लिए नहीं होती, या विरक्ति केवल बोलने के लिए नहीं होती, हमारे कर्मों से दिखाना है। जब हम हमारे कर्मों से दिखाते हैं कि हां मैं इस व्यक्ति के प्रति शरणागति अपनी व्यक्त करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, तो वो अर्जुन अपने पिछले श्लोक के द्वारा व्यक्त किए हैं। अब आज का जो श्लोक है संजय उवाच, किससे कह रहे हैं संजय? धृतराष्ट्र से। ये ध्यान में रखना है कि ये वार्तालाप इसमें कितने डायलॉग्स चल रहे हैं, भगवद गीता में कितने के डायलॉग्स हैं, कितने पार्टी? नहीं, चार व्यक्ति हो गए, दो पार्टियां हो गई ना, टू पेयर्स, संजय धृतराष्ट्र और कृष्ण अर्जुन। तो इन्होंने भी जो भी श्लोक कहे हैं, संजय ने जो भी श्लोक कहे हैं, बहुत नाप तोल कर इनके एक एक शब्द हुए हैं। ये आज के श्लोक में भी, क्योंकि संजय, ये ध्यान में रखना चाहिए कि धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं, तो जो भी वक्ता श्रोता के अनुसार शब्द इस्तेमाल करता है। अब भगवान कृष्ण अर्जुन को सुनाए तो अर्जुन श्रोता है, भगवान वक्ता है, इसलिए भगवान ने जो अर्जुन को सुनाया वो ये नहीं कि धृतराष्ट्र वहां बैठा सुन रहा है, अर्जुन के लिए था वो। और संजय वही भगवान की वाणी धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं अपने शब्दों में। धृतराष्ट्र मतलब उसको बोलते हैं ना सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव स्पीकिंग, सब्जेक्टिव लिसनिंग। इसलिए आज का श्लोक भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशम् गुडाकेशः परन्तपः नयोत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तुष्णीं बभूवः। संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशम् गुडाकेशः परन्तपः नयोत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तुष्णीं बभूवः। संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशम् गुडाकेशः परन्तपः नयोत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तुष्णीं बभूवः। आपने यदि ध्यान दिया होगा, जब भी संजय उवाच आया है, श्रीमान संजय इन्होंने हर समय अर्जुन के विभिन्न नामों का उल्लेख किया है, कभी गुडाकेश, कभी धनंजय, कभी कौंतेय, और भगवान का भी उन्होंने अलग अलग नामों का उच्चारण करके उल्लेख किया है। जैसे यहां पर भगवान को ऋषिकेश और गोविंद, एक ही श्लोक में देखिए ऋषिकेश और गोविंद। इसका बहुत महत्वपूर्ण कारण है, कारण यह है कि एक तो वो धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं, और आप ये देखिए कि संजय इन्होंने धृतराष्ट्र को भगवान का वर्णन करते समय ऋषिकेश शब्द बहुत बार इस्तेमाल किया है। ये इसलिए क्योंकि धृतराष्ट्र की एक महत्वपूर्ण इंद्रिय नहीं है आंखें, तो संजय हर समय सोचते कि कितना दुर्भाग्य है धृतराष्ट्र की आंखें नहीं है इसकी, इतने सुंदर भगवान अवतरित हुए, सोचिए भगवान अवतरित हुए हैं और वो भी इसी उसी युग में जिसमें धृतराष्ट्र भी था। और ऐसा नहीं कि भगवान कभी हस्तिनापुर आए नहीं, यहां तक कि दुर्योधन ने भगवान का दर्शन कर लिया, परंतु संजय हर समय सोचते कि ये धृतराष्ट्र इतना दुर्भाग्यशाली है, भगवान होते हुए भी ये भगवान का दर्शन नहीं कर पा रहा है, अंधा। केवल शारीरिक रूप से नहीं, आध्यात्मिक रूप से भी ये अंधा। इसलिए ऋषिकेश, ऋषिकेश जो सभी इंद्रियों के स्वामी है, तुम्हारे अंधेपन के भी स्वामी है, धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं कि यदि तुम्हें वास्तविक अंधकार से बाहर आना है तो इन ऋषिकेश की शरण तुम्हें ग्रहण करनी होगी। ये कोई बुक किया है क्या सीट? तो ये चेयर पीछे दे सकते हैं। कोई एडवांस बुकिंग है क्या? नहीं ना, वहां पर भी कुछ खाली है सीट्स। इधर भी सीट खाली, पीछे देखो। हाँ, यदि कोई अच्छा योग करना चाहते हैं तो यहां पर भी पद्मासन में बैठ सकते हैं। अब यहां पर संजय कहते हैं, एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुड़ाकेश परंतप। उक्त्वा का अर्थ संस्कृत में होता है बोलना, उक्त्वा उक्ति करना, जैसे आप सुने होंगे, तो उक्त्वा का अर्थ है बोलना। एवं तत्पश्चात उक्त्वा ऋषिकेशम, तत्पश्चात भगवान श्री ऋषिकेश को गुड़ाकेश परंतप ने कहा, क्या कहा? न योत्स्य, मैं नहीं युद्ध करूंगा, ये कहा। कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हुए? गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। गोविंदम न योत्स्य, न योत्स्य गोविंदम उक्त्वा तुष्णिम, ऐसा बोलने के पश्चात तुष्णिम, तुष्णिम का अर्थ है शांत हो गए। बबूह, बैठ गए। तो ये इस श्लोक का अर्थ हुआ। अब यदि हम संजय ने जो विशेष दो शब्द इस्तेमाल किए हैं, न योत्स्य और परंतप, जैसे हमने कहा कि ये ध्यान में रखना होगा कि संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं श्लोक, तो उन्होंने जब धृतराष्ट्र को कहा न योत्स्य, कि अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो धृतराष्ट्र के चेहरे पे बहुत सुंदर हंसी आई, इतने प्रसन्न हो गए धृतराष्ट्र, अर्जुन युद्ध नहीं करेगा अर्थात मेरे दुर्योधन को मिल जाएगा राज्य। वो हंसी क्यों थी? वो आसक्ति, पुत्र मोह, दुर्योधन के प्रति आसक्ति। तो संजय जब देखे कि धृतराष्ट्र मन ही मन खुश हो रहे हैं, लड्डू फूट रहे हैं, तो तुरंत का परंतप, अर्जुन को क्या पुकारा? परंतप। परंतप हमने इसकी चर्चा की थी पहले भी, परंतप का अर्थ है शत्रुओं को जो तपाने वाला है, और जिसने परम तपस्या की है, दो अर्थ हैं। तो शत्रुओं को तपाने वाला ये अर्जुन, तो मानो तुरंत संजय धृतराष्ट्र से ये कह रहे हैं कि आप इस भ्रम में मत रहिए कि अर्जुन ने ये कह दिया न योत्स्य इति गोविंदम तो आपका पुत्र जीत जाएगा, वो परंतप है, एक वो जो वो क्या कहते हैं उसे, जैसे पेट्रोल को आग लगने में एक चिंगारी की जरूरत है, बस एक चिंगारी भगवान लगा देंगे। क्योंकि धृतराष्ट्र अभी तक ये इस भ्रम में थे कि हो गया ना, अब तो बैठ गए तो अब तो भगवान फिर से ले चलेंगे रथ। धृतराष्ट्र ने ये कल्पना नहीं की थी कि अब भगवान बोलना शुरू करने वाले हैं, अब हो गया अब तो चलो फिर राज्याभिषेक की तैयारी करो मेरे बेटे की। इसलिए कह रहे परंतप, वो अब भगवान जो वो सुलगाएंगे, यदि ये वो शब्द इस्तेमाल करें तो, अर्जुन की जो अग्नि, क्षत्रिय अग्नि, तपाने वाली, शत्रुओं को तपाने वाली अग्नि, भगवान जो जागृत करने वाले हैं, उसके पश्चात सबका वध होने वाला है वहां पर। और वो ही नहीं, यहां पर संजय परंतप भगवान को भी उल्लेख करते हुए कह रहे हैं कि यदि अर्जुन भाग भी जाए, रणभूमि से भाग भी जाए, तो भगवान ने 11वें अध्याय में क्या कहा, भगवान 11वें अध्याय में अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन यदि तुम इस गांडीव को नहीं उठाओगे तो मैं यहां पर पहले से प्रण लिया हुआ हूं कि जितने खड़े हैं इन सब को मैं खत्म करने वाला हूं, ये सब मेरे हाथों खत्म होने वाले हैं, यहां से कोई जीवित नहीं जाने वाला। यदि तुम, युधिष्ठिर, भीम, सारे पांडव, सारी सेनाएं यहां से चली जाए, मैं अकेला इन सबको खत्म करूंगा, यहां से कोई, ये दुर्योधन जीवित नहीं जाएगा। तुम उठाओ गांडीव, उठाना है तो उठाओ, नहीं उठाना है तो मत उठाओ, मैं तो मारने वाला हूं इनको। तो वो भगवान भी परंतप, ये तपाने वाले अर्जुन तप गए थे भगवान का विश्वरूप देख के। तो यहां पर विशेष रूप से धृतराष्ट्र, ताकि धृतराष्ट्र बैठकर सोने, नहीं तो होता है कि धृतराष्ट्र इतना खुश हो जाता है कि उठ के चलो चलो जश्न मनाते, अभी छोड़ो क्या बोलना, अभी मैं तैयारियां करता हूं। नहीं, परंतप ये मत समझो, न योद्ध से नहीं युद्ध करने वाले, तो वो अपना जो गुण है, परंतप होने का गुण है, वो छोड़ चुके। नहीं, इसलिए संजय ये दो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। अब श्लोक के कुछ और महत्वपूर्ण शब्द, उक्त्वा ऋषिकेश गुड़ाकेश परंतप और गोविंद। उक्त्वा का हमने अर्थ बताया, कहना, उक्त्वा का अर्थ है कहना। परंतु यहां पर दो बार उक्त्वा शब्द इस्तेमाल किया संजय ने, एवं उक्त्वा ऋषिकेश गुड़ाकेश परंतप न योत्स इति गोविंदम उक्त्वा तुष्णिम, फिर से उक्त्वा, दो बार उक्त्वा। अर्थात संजय यहां बोल रहे हैं कि अर्जुन ने बोला और फिर शांत हुए। तो उक्त्वा तुष्णिम का अर्थ होता है कि अब बोलना उनका शांत हुआ। तो कोई पूछेगा कि क्या बोल के शांत हुए, ये बोल के शांत हुए न योत्स्य। यदि इसको गहराई से हम देखें तो अर्जुन के श्रवण करने के ये दो लक्षण बताए गए कि श्रवण करते समय शांत होना चाहिए, तुष्णिम, और श्रवण करते समय और कुछ नहीं करना चाहिए श्रवण के अलावा। अर्थात यदि संजय ये कहते कि अर्जुन युद्ध कर रहे थे, तो युद्ध करते समय कैसे सुनते हो? तो दो स्थितियों में अर्जुन भगवान की वाणी नहीं सुन पाते। कौन सी दो स्थिति? एक तो यदि अर्जुन बोलते रहते, तो यदि अर्जुन चुप नहीं होते, यहां पे जैसे बताया तुष्णिम, चुप हुए अभी, यदि अर्जुन चुप नहीं होते तो भगवान बोलना कैसे शुरू करते? इसलिए भगवान प्रतीक्षा करे, बोलो बोलो, तुम्हारा पूरा कैसेट खत्म होने दो। दोनों साइड, दोनों साइड पलट के भी लगा लिया, सब खत्म हो गया, फिर अब कुछ नहीं, तो अब चुप हो गए। तो शारीरिक दृष्टिकोण से अब अर्जुन बैठ गए, शांत हो गए, अर्थात शारीरिक दृष्टिकोण से अर्जुन तैयार हुए श्रवण करने के। ये यहां पे संजय बता रहे हैं कि दो स्थितियों में अर्जुन नहीं सुन पाते भगवान से, एक तो युद्ध करते हुए और बोलते हुए। तो इसकी हम आगे चर्चा करेंगे कि अर्जुन कैसे धीरे धीरे श्रवण करने के योग्य बन रहे हैं, दोनों मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से कैसे वो श्रवण करने के योग्य बन रहे। इसलिए ये दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, न लड़ते हुए न बोलते हुए, तुष्णिम अर्थात चुप हुए, न योद्ध से अर्थात और कुछ नहीं कर रहे, अभी बैठ गए। अब संजय इन्होंने भगवान को ऋषिकेश पुकारा, जिसकी व्याख्या हमने की और यहां पर भी बताया गया। ऋषिकेश का अर्थ है पांच ज्ञानेंद्रियों के स्वामी, हमारे मन के भी स्वामी और हमारे बुद्धि के भी स्वामी। तो यहां पर अर्जुन उनकी जो इंद्रियां हैं, उनकी इंद्रियां अब कुछ नहीं कर रही हैं, और भगवान श्री कृष्ण को देख रही हैं आंखें, भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में उनका पूरा शरीर अर्थात उनकी त्वचा, भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से जो गीता वो उनके कर्ण सुनेंगे। अर्थात अर्जुन अपनी सभी इंद्रियों से ऋषिकेश के अधीन है। तो यहां पर मानो संजय ये बता रहे हैं कि श्रवण के लिए केवल ऐसा नहीं कि हमें अपने कान देने, श्रवण वो कब सिद्ध होगा हमारा, जब हम हमारा मन और हमारी बुद्धि और हमारी पांचों इंद्रियां ये सब के स्वामी ऋषिकेश हैं। केवल पांच इंद्रियों के स्वामी नहीं है केवल वो, या केवल मन के स्वामी या केवल बुद्धि के स्वामी नहीं है। इसलिए हम जो ये उदाहरण देते हैं उपनिषद से, ये उदाहरण है श्वेत श्वेतार उपनिषद से, शरीर रूपी रथ का, जिसमें पांच घोड़े हैं, हमारी पांच इंद्रियां ज्ञानेंद्रियां, लगाम है मन और सारथी है बुद्धि और रथी है आत्मा। अब इसमें यदि हम इस उदाहरण को कलयुग में लें तो रथ को अर्थात घोड़ों को एक दिशा में या सही दिशा में ले जाने के लिए क्या केवल इतना काफी है, लगाम ठीक से पकड़े हुए है, सारथी ने लगाम ठीक से पकड़ी, अर्थात बुद्धि ने मन को नियंत्रण में रखा है, मन ने फिर इंद्रियों को नियंत्रण में अर्थात घोड़ों को नियंत्रण में रखा है। तो घोड़ों को जब नियंत्रण में रखा जाएगा लगाम को ठीक से पकड़ने के द्वारा, तो रथ तो सही दिशा में जाएगा। हाँ, नहीं, मान लो कई बार आपने देखा है कोई घोड़ा गाड़ी है या तांगा, घोड़ा बंधा हुआ है, लगाम भी बंधी हुई है और कसी हुई है, परंतु घोड़ा कुछ घास देख लेता है तो क्या करता है, वो घास की ओर जाना शुरू। इसलिए घोड़ों को क्या बांधा जाता है उनकी आंखों पर, आपने देखा आंखों पे घोड़े के, वो क्यों बांधा जाता है, वो देखिए ये वाली इधर देखे सामने, इट मीन्स द हॉर्स शुड नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय द थिंग्स विच विल कम ऑन द वे, कहीं पे घास, कहीं पे पानी, कहीं पे कोई रेस्टोरेंट। तो उससे क्या समझ में आ रहा है कि कलयुग में माया देवी, कलयुग में माया देवी क्या करती हैं कि जब वो किसी साधक के जीवन में देखती हैं कि इसने लगाम सही पकड़ी है, इसकी बुद्धि ने मन पर नियंत्रण लिया, अर्थात सारथी ने लगाम सही पकड़ी है, तो अब घोड़ों को कैसे भ्रमित किया जाए। तो माया देवी क्या करती है, फिर कहीं पे घास रख दिया, अच्छी ताजी घास घोड़ों के लिए, कहीं पे शीतल जल पीने के लिए, जो भी इंद्रियों के लिए जो कुछ। अब यहां पर देखिए कि ये जो पांच घोड़े हैं ये हमारी पांच इंद्रियां हैं, तो माया देवी के पास कितनी वैरायटी है, हर एक घोड़ा अलग अलग उसका चारा है। तो माया देवी अलग अलग चारा प्रस्तुत करती है इंद्रियों के लिए, आंखों के लिए अलग चारा, जिह्वा के लिए अलग चारा, त्वचा के लिए अलग, कर्णों के लिए अलग, नासिका के लिए अलग, और उन चारों में भी वैरायटी है कि आंखों के लिए अलग अलग वैरायटी। तो कल्पना कीजिए कि ऐसा रथ जिसके पांचों घोड़ों के अलग अलग चारे हैं, द फूड फॉर ईच हॉर्स इज डिफरेंट, तो कितना मुश्किल है वो लगाम को संभाल के रखना। अब यदि साधारण घोड़े होते हैं सभी पांचों घोड़े के एक ही चारा होगा ना, घास, तो सारथी के लिए आसान होगा, भाई घास को भगाओ यहां से। अब देख लिए सारथी के लिए कितना मुश्किल हो जा रहा है कि एक घोड़ा घास के पीछे भाग रहा है, एक घोड़ा हलवे के पीछे भाग रहा है। इसलिए ये उदाहरण मैंने लिया क्योंकि इस उदाहरण को यदि हम थोड़ा और विस्तारित करके समझें तो कलयुग में ये मन को या बुद्धि को मन के ऊपर नियंत्रण लाने के लिए बहुत कठिनाई हो रही है आजकल, बिकॉज ऑफ द सेंस ऑब्जेक्ट्स। और इसलिए ये जो अलग अलग आविष्कार वैज्ञानिक या विज्ञान कर करके प्रस्तुत करते हैं, ये सब हमारे पांच घोड़ों के लिए प्रलोभन रास्ते में। कौन, किसके रास्ते में, भगवत धाम के रास्ते, भगवत धाम के जाने के रास्ते में ये सब अलग अलग प्रलोभन है। इसलिए यहां पे हमें ये समझना है कि बार बार संजय भगवान को ये ऋषिकेश शब्द से संबोधित कर रहे हैं, ये देखते हुए कि कलयुग में जब तक हम हमारे सभी हमारे मन बुद्धि और पांचों इंद्रियों, कई बार आप देखो कई लोग अपनी इंद्रियों को किसी न किसी प्रकार से आध्यात्म में लगाते हैं, कई लोग इंद्रियों को नहीं केवल मन को लगाने के लिए बात करते हैं कि अरे मन होना चाहिए ना, शरीर से जाने क्या जरूरत है मंदिर में, मन में देखो भगवान को। ये सब ढोंग करना, मंदिर जाना, ये सब तिलक बड़ा लंबा चौड़ा, कंठी माला, मन में भावना होनी चाहिए। तो एक है कि केवल मन की भावना, एक है जो बिना मन के जाते मंदिर में, मंदिर जाना है, सोमवार जाना है, बुधवार जाना है, और कई वो अपनी बुद्धि लगाते लगाते जाते नहीं कहीं, ना तो मन लगाते हैं ना शरीर लगाते हैं, वो उसमें अटके रहते हैं, भगवान है या नहीं है, कभी कभी है कभी कभी नहीं है, मेरे साथ जब कुछ अच्छा होता है तो हाँ जय भगवान आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, जब कुछ बुरा हो गया भाड़ में गए सारे भगवान किसी काम के नहीं। तो यहां पर यह समझना चाहिए कि हमें अध्यात्म को केवल कुछ भाग नहीं लेना उसका, या ऋषिकेश शब्द को केवल कुछ एक पहलू से नहीं समझना, उसे कहते हैं अर्ध कुकुटी न्याय। कौन जानता है अर्ध कुकुटी न्याय क्या है? कुकुटी कौन है? मुर्गी, मुर्गी, मुर्गी का अंडा, सोने के, सोने देने वाली मुर्गी का अंडा, मालूम है? सोने देने वाली, सोने का अंडा देने वाली ये मुर्गी। तो व्यक्ति देखा कि इसका पिछला भाग बहुत फायदेमंद है, जहां से सोने का अंडा आता है, परंतु इसका जो अगला भाग है उसमें खर्चा पानी ज्यादा डालना पड़ता है, काट दो। इसको कहते हैं अर्ध कुकुटी न्याय। आप लोग सुने ना ये सब? तो वैसे ही कई बार अध्यात्म में या हमारी साधना भक्ति में ये अर्ध कुकुटी न्याय। तो कई बार एक कई हैं जो आधा नहीं काटे, 1/4 काटते, थोड़ा केवल उसकी चोंच काटो, पूरा मत काटो, चोंच काटो खाली, या जो नली है वहां पे कुछ कर, या फिर थोड़ा चारे में कुछ बदलाव कर दो, थोड़ा सस्ता चारा। तो हमारी साधना भक्ति में इसे कहते हैं वॉटर्ड डाउन साधना भक्ति, कि डाइल्यूटेड साधना भक्ति, दूध कम ज्यादा पानी चाहे, वैसे होता ना। तो इसलिए यहां पर वो ऋषिकेश शब्द एक तो धृतराष्ट्र को सुनाते हुए कि आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि आपकी सारी इंद्रियों के स्वामी वो हैं, सबसे बड़ी तकलीफ आपके जीवन में इसलिए क्योंकि आप अंधे, या आपका अंधापन दूर करेंगे केवल ऋषिकेश। इसके पश्चात गुड़ाकेश, ये कौन है? ये मत समझिए कि यहां पर अब संजय कुछ जैसे वो कविता में राइमिंग होता है ना, ऋषिकेश गुड़ाकेश, इसलिए अर्जुन को उस प्रकार से बुला रहे हैं कि काव्यात्मक दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा मेरा श्लोक। तो सभी लोग जब चर्चा करेंगे तो बोलेंगे क्या संजय कवि हैं? नहीं, वो कारण नहीं था। गुड़ाकेश का अर्थ दो बताया गया है, आलस्य को जीतने वाला और अंधकार को जीतने वाला। अब यहां पर यह दिख रहा है कि अर्जुन आलसी हैं युद्ध करने के लिए, तो इसलिए संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि ये गुड़ाकेश है, ये बिल्कुल आलसी नहीं है ये व्यक्ति। ये मत समझना कि अब इसे आलस्य आ रहा है, इतने सारे लोगों को कैसे मारूं, कितनी बाण चलानी होगी, पता नहीं कब तक युद्ध, कब एक एक व्यक्ति जब तक नहीं मरता तब तक युद्ध हम जीत नहीं पाएंगे, और सब कुछ अर्जुन के ऊपर निर्भर था। तो ये नहीं कि अब अर्जुन आलस्य दिखा रहे हैं, नहीं, आलस्य बिल्कुल नहीं। इसलिए संजय कहते हैं कि गुड़ाकेश, जिनके अंदर बिल्कुल आलस्य नहीं, और जिनके अंदर जो अंधकार को जीतने वाले, अंधकार को जीतने का अर्थ है रात्रि का अंधकार भी, और तमस जिसे कहते हैं तमोगुण को जीतने वाले। जैसे ये कथा हमने सुनाई, अर्जुन अब जब गुरुकुल में थे तो वो रात्रि में भी अपनी ट्रेनिंग जारी रखते, रात को भी अंधेरे में, जैसे नाइट क्रिकेट होता है, लेकिन वो तो सब फ्लड लाइट वगैरह लगा के खेलते हैं, लेकिन अर्जुन कोई फ्लड लाइट वगैरह नहीं लगाते, खूब अंधेरे में अर्जुन अपना निशाना, उसका प्रशिक्षण लेते। तो वो अंधकार और आंतरिक अंधकार अर्थात तमोगुण को जीतने वाला, निद्रा को जीतने वाला। युद्ध के पश्चात जब युधिष्ठिर महाराज, इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, तो उसमें अश्व को भेजा गया और अर्जुन अश्व को लेकर गए, और इस अश्वमेध यज्ञ का नियम ये कि उस अश्व को अर्जुन जहां कहीं पर भी अलग अलग प्रांतों में ले जाते, जो भी राजा उस प्रांत का, यदि वो ललकारता कि नहीं मैं लड़ाई करूंगा और जीत के बताऊंगा, तो अर्जुन, फिर अर्जुन को युद्ध करना पड़ता उनसे, और फिर जीतने के पश्चात फिर सिग्नेचर की भाई तुम अब हमारे अंडर हो, तो युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को कहा था, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज जानते थे कि अर्जुन के बराबर कोई नहीं है, यहां पर तो युद्ध भी हम लोग सब जीत ले चुके हैं और अर्जुन अश्व लेके जा रहे हैं और अर्जुन क्षत्रिय है, कोई भी ललकार है तो अर्जुन तो 2 मिनट में खत्म कर देंगे उसको। तो युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को यह आदेश दिया था कि किसी को भी जान से नहीं मारना है तुम्हें, परास्त करना है, केवल हराना है, जान से किसी को नहीं मारना। तो ये आदेश अर्जुन लेके, बहुत कठिन था अर्जुन के लिए, क्योंकि वो सामने वाला उसको 2 मिनट में अर्जुन खत्म कर सकते थे, लेकिन अब युधिष्ठिर महाराज बड़े भैया का आदेश है, धर्मराज इनका आदेश है कि खत्म नहीं करना है, परास्त करना है केवल। तो एक ऐसे ही राजा थे जो अर्जुन को ललकारे, वो इसलिए ललकारे अर्जुन के साथ, वो दूसरों को बताना चाहते थे मैंने युद्ध भी किया तो किससे किया, हारा भी तो भी किससे हारा, अर्जुन से। तो एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गए, अर्जुन जो 2 मिनट में इस व्यक्ति को खत्म कर सकते थे, अर्जुन ने सोचा, क्योंकि अर्जुन उन्होंने तो निद्रा को जीत चुके थे वो बुढ़ाकेश, तो बिना सोए अर्जुन युद्ध जारी रखे, जारी रखे, जारी रखे। अब अर्जुन तो गुड़ाकेश, बाकी सामने वाला थोड़ी गुड़ाकेश, अब उनको नींद आने लगी तो सब कुछ हाथ से सरकने लगा नींद आने आते समय, कई बार होता है हमारी बीड बैग सरक जाती, सब पता ही नहीं लगता बीड बैग कहां गई, वो माला भी ढूंढनी पड़ती है अभी, कहां बीड बैग के अंदर घुस के कहीं गई, कहां गई माला, कई बार बीड बैग में ही सो जाते हैं। तो ये परास्त हुए, इतने ज्यादा ये व्याकुल हो गए नींद के कारण ये राजा, कि नींद नहीं होने के वजह से अर्जुन, बस भाई मेरे को सोने दो, मैं हार गया, ये लो सर्टिफिकेट साइन करके दे दो। तो इस राजा को अर्जुन ने केवल ये गुण के वजह से हरा दिया, गुड़ाकेश होने के वजह से। ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है, हम लोग बहुत इसको इसकी सराहना कर सकते हैं कलयुग में, जिन्होंने निद्रा को जीत लिया, अंधकार को जीत लिया, तमोगुण को जीत लिया, आलस्य को जीत लिया। तो इसलिए यहां पर ये विरोधाभास लग रहा है, गुड़ाकेश न योत्स्य, कि गुड़ाकेश बोल रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो समझ सकते हैं संजय ये बता रहे हैं कि यदि गुड़ाकेश जो बिल्कुल आलसी नहीं है, जिन्होंने आलस्य को जीत लिया, वो बोल रहे हैं कि युद्ध नहीं करेंगे, तो बीमारी कितनी गहरी है देखिए। यदि कुंभकर्ण बोलता कि मुझे युद्ध नहीं करना है तो समझ जाते क्यों नहीं करना है, सोना है क्योंकि इसको, हम कोई बोलते कई बार जप नहीं करना है या बहुत नींद आ रही वगैरह, तो समझ सकते हैं कि आलस्य की वजह से हमारी साधना नहीं होती। परंतु यहां पर यह कॉम्बिनेशन कुछ समझ में नहीं आ रहा है, गुड़ाकेश और न योत्स्य। इसलिए यहां पर संजय ये प्रस्तुत कर रहे हैं इन दो शब्दों के द्वारा कि भगवान श्री कृष्ण की यदि वाणी सुननी है तो उसके अंदर हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए, कि इतनी व्याकुलता के पश्चात फिर भगवान ने बोलना प्रारंभ किया, अर्जुन की इतनी व्याकुलता देखने के बाद या ऐसी दशा देखने के बाद। इसलिए फिर उसके साथ साथ वो अर्जुन को परम तप भी बोल रहे हैं, शत्रु को तपाने वाला और परम तपस्या करने वाला। यहां पर देखिए अर्जुन को केवल संजय नहीं देख रहे, सारे योद्धा देख रहे हैं अर्जुन को बैठे हुए, 64 करोड़ योद्धा देख रहे हैं अर्जुन, जिनको अभी युद्ध शुरू करना चाहिए वो बैठे। जैसे मान लो कि कोई बहुत कुशल व्यक्ति है, किसी कला में बहुत कुशल है, और वो बैठा हुआ है, तो सभी की नजर उस पर जाती है ना। जैसे मान लो क्रिकेट का मैच चल रहा है और ऑडियंस में सचिन तेंदुलकर बैठा है, तो लोग सब उसको देखते रहेंगे, ज्यादा पिच पे जो चल रहा है उससे ज्यादा उसको देखते रहेंगे, ये कैसे देखता है ना। तो यहां पर जो मेन प्लेयर है अर्जुन, वो युद्ध न करने के बजाय बैठे हुए हैं, तो सभी लोग अर्जुन को देख रहे हैं, ये क्यों बैठे, अरे इनको तो सब कुछ करना है, इन्हीं के ऊपर तो निर्भर है पूरा युद्ध, और ये क्यों बैठे। भगवान भी यही सोचे, ये क्यों बैठ गए। तो यहां पर संजय धृतराष्ट्र के सामने, देखिए ये समझना चाहिए कि धृतराष्ट्र को दिखाई नहीं दे रहा, अंधा है ना धृतराष्ट्र, तो ये सब कुछ संजय बता रहे अभी वो बैठ गए। अभी धृतराष्ट्र यदि देख पाते, हालांकि उनको देव दृष्टि भी नहीं मिली थी वैसे, परंतु फिर भी जब कोई व्यक्ति कुछ अपने शारीरिक आंखों से, चर्म चक्षु से नहीं देख पाता, तो उसे एक एक स्थिति का हाल बताना पड़ता है ना। अब अर्जुन चुप हुए, अब अर्जुन बैठ गए, अब अर्जुन खड़े हुए, अब उन्होंने अपना दायां हाथ यहां किया, अब उन्होंने गांडी उठाया, अब वो ये किए, अब दुर्योधन को थप्पड़ मारा, अब ये कर रहे, वो कर रहे, जो भी कुछ। तो यहां पर यह समझ में आ रहा है कि संजय वो अपनी भूमिका कितनी अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। देखिए एक क्या बोलते हैं, कमेंटेटर की भूमिका कितनी अच्छी तरीके से निभा रहे हैं कि धृतराष्ट्र को हर एक स्थिति का आंखों देखा हाल सुना रहे हैं, और वो भी विशेष शब्दों को इस्तेमाल करते हुए। इसलिए जो कमेंटेटर होते हैं बहुत विशेष शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो संजय बहुत विशेष परंतप कि वो, इसे ये समझ में आ रहा है कि जो गुड़ाकेश है, जिसने आलस्य से जीत लिया है, जो शत्रुओं को तपाने वाला परंतप न योत्स्य बोलता है, तो वो जो न योत्स्य के पहले ये सब कुछ जो बोल रहे हैं किसको बोलता है, ऋषिकेश को, वो भी गुड़ाकेश, वो भी परंतप न योत्स्य, वो भी गोविंद को बोलते हुए कि गोविंद मैं नहीं युद्ध करूं। तो इससे, इन सब शब्दों से संजय बहुत एक्साइटिंग बना रहे पूरी गीता को, अभी जो गीता शुरू होने वाली है वो कौन किसको सुना रहा है, ये इस श्लोक से समझ में आ रहा है। इस श्लोक से ये समझ में आ रहा है कि जो सुनाने वाला है वो साधारण नहीं है, वो ऋषिकेश है, और जो सुनने वाला है वो भी साधारण नहीं है, वो गुड़ाकेश है, वो परंतप है। सुनाने वाले ऋषिकेश हैं, गोविंद हैं, सुनने वाले गुड़ाकेश हैं, परंतप हैं। इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये श्लोक तो संजय बोल रहे हैं ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जब अर्जुन और कृष्ण बोलेंगे तब मैं थोड़ा ध्यान से पढ़ूंगा। नहीं, अभी भगवान शुरू करने से पहले हमें इन दोनों की क्या योग्यताएं हैं, इनका क्या स्तर है, वो जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम काबिल नहीं बनेंगे ठीक से श्रवण करने के। गोविंद क्या अर्थ है? इंद का अर्थ होता है प्रसन्नता देने वाला, गो का अर्थ है, गो का अर्थ है हमारी इंद्रियां, गो का अर्थ है भूमि देवी, गो का अर्थ है गाय। परंतु यहां पर संजय जो गोविंद शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका विशेष अलग से एक अर्थ है। गो का अर्थ है वेदवाणी, क्योंकि एक गौ में आप देखो सारे देवता, लक्ष्मी देवी सभी निवास करते हैं, और सारे शास्त्रों का सार गौ में पाया जाता है। तो यहां पर संजय कहते हैं गोविंद, गो का अर्थ है वेदवाणी, विंद का अर्थ है भली भांति समझाने वाला। तो केवल गोविंद हैं जो वेदों को भली भांति समझा सकते। अच्छा, ये भली भांति वेद को समझाने का अर्थ क्या है? भली भांति वेद को समझाने का अर्थ है देश काल पात्र के अनुसार वेद को समझाया जाए। उसी वेद को यदि देश काल पात्र के अनुसार नहीं समझाया जाएगा तो वही वेद अधर्म भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए वर्णाश्रम धर्म में, एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, वर्णाश्रम धर्म में ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, तीन आश्रम है। तो 5 से लेके 25 वर्ष तक एक व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, उसके पश्चात फिर वो गृहस्थ आश्रम में जा सकता है, उसके पश्चात फिर वानप्रस्थ, उसके पश्चात सन्यास। अब ये शास्त्र में इन सब के धर्म बताए गए कि ब्रह्मचारी का धर्म क्या होना चाहिए, गृहस्थ का धर्म क्या होना चाहिए, वानप्रस्थ का, सन्यासी का। अब कोई वेदवाणी को लेता है परंतु उसका टाइमिंग चेंज कर देता है तो देखिए कैसे धर्म अधर्म में परिणत हो सकता है। कि वेद में गृहस्थों के लिए बताया गया है कि संतान उत्पत्ति करना, शास्त्र के अनुसार है, गर्भाधान संस्कार, अलग अलग संस्कार हैं जिसके द्वारा एक गृहस्थ संतान की उत्पत्ति करते हैं। अब वो गृहस्थ जब वानप्रस्थ ले लिया है, संन्यास ले लिया है, अब फिर से उसको खोले संन्यास लेने के बाद, क्या शास्त्र में बोला है संतान उत्पत्ति? तो एक गृहस्थ यदि 10 संतान भी उत्पन्न करता है तो शास्त्र के अनुसार कर रहा है, और एक सन्यासी यदि 1 संतान भी उत्पन्न कर रहा है तो क्या हो गया? वो बोलेगा अरे एक ही किया। वही शास्त्र की वाणी है, अलग समय में उसको लगाया जाए तो इसको कहेंगे भली भांति नहीं वेदवाणी को लगाया गया। इसलिए संजय, ये मैं उदाहरण इसलिए दिया हूं कि अर्जुन भी शास्त्र को कोट कर रहे हैं परंतु भली भांति नहीं कर रहे। प्रथम अध्याय में अर्जुन भी शास्त्र को कोट कर रहे थे कि शास्त्र के अनुसार जो आतताई हैं, कैसे आतताई को मारना चाहिए, हालांकि उसके बारे में बोल रहे हैं कि आतताई को मारना चाहिए, परंतु उसी शास्त्र को कोट करते, धर्म शास्त्र को कोट करते हुए अर्जुन बोलते हैं कि कैसे स्त्रियों की रक्षा होनी चाहिए, वर्ण संकर ये सब कुछ बता रहे हैं। तो यहां पर संजय बोलते हैं केवल गोविंद हैं जो वेद वाणी को भली भांति जानते हैं और भली भांति उसे समझा सकते हैं। इसलिए हमें इससे क्या समझना है कि विशेष रूप से भारत में बहुत से मिलेंगे जो शास्त्र को कोट करेंगे, वेदवाणी कोट करेंगे, परंतु प्रश्न है क्या उस शास्त्र को वो भली भांति कोट कर रहे हैं? एक है शास्त्र को कोट नहीं करना, वो तो हो गए नास्तिक। उनसे ज्यादा खतरनाक है जो शास्त्र को मिसकोट करते हैं। जैसे कि शास्त्रों में वर्णन है ये सब गोमेद यज्ञ और ये बकरी की बलि चढ़ाना, ये सब कुछ, तो ये सब कुछ शास्त्र में इसका वर्णन है कि कैसे माता काली को ये सब कुछ चढ़ाया जाता है, सब शास्त्र में वर्णन है। परंतु एक समय के लिए था इसका वर्णन, एक समय के लिए कुछ लोगों के लिए था, परंतु उसे अब गलत तरीके से जो किया जा रहा है तो इसको कहेंगे शास्त्र को मिसकोट किया जा रहा है। जैसे कई लोग भगवान शिव जी के नाम पे बहुत नशा करते हैं कि अब शिवरात्रि के दिन होता क्या है ज्यादातर, वो तो बहाना है, सब चलता है धुआं चिलम ये वो क्या भांग, परंतु भगवान शिवजी उनको यदि उनके चरित्र को देखा जाए तो परम वैष्णव है। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि शिव जी इनकी अर्धांगिनी है दुर्गा देवी, तो दुर्गा देवी को लोग अर्पित करते हैं, तो शिव जी को नशा अर्पित करते हैं और दुर्गा देवी को मांस, तो हो गया अपना, तो और क्या चाहिए, चिकन के साथ रम। और कहते हैं हम शिव पार्वती के भक्त हैं, सब उनका महाप्रसाद है। हमारे आचार्य बताते हैं कि ये जो भी कुछ चीज मांस अर्पित करते हैं, वो जो भूत प्रेत है ना, जो भूत प्रेत जो कि शिव जी के अंडर हैं और कोई उनको नहीं संभाल सकता, केवल वो महादेव संभाल सकते हैं, तो जो उनके अंडर है, तो वो एक तो दुर्गा देवी जो भी उनके पति का महाप्रसाद खाती हैं और उनके पति केवल भगवान विष्णु का महाप्रसाद खाते हैं, तो वो तो चार नियम और कांदा लहसुन चाय कॉफी कुछ नहीं उनका चलता। तो ये जो भी कुछ अर्पित करते हैं, ये मांस वो दे देते हैं किसको, ये भूत प्रेत वगैरह। तो ये जो इस भ्रम में है कि हम दुर्गा का प्रसाद खा रहे हैं, ये किसका प्रसाद खा रहे हैं, भूत का, ये भूत प्रेत का प्रसाद चल रहा है। और भूत प्रेत का प्रसाद खाने के बाद होगा क्या, सब भूत प्रेत की आदतें होंगी। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है यहां पर कि संजय गोविंद शब्द का ये जो अर्थ कर बोल रहे हैं कि अर्जुन ने वेद वाणी सुनाई परंतु भली भांति नहीं सुनाई, अब धृतराष्ट्र सुनो भली भांति गोविंद वेद वाणी कैसे सुनाते हैं, वो है भगवत गीता। अब भगवत गीता के चौथे अध्याय में ये श्लोक है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम इंद्रिय संयम तत्पर, जिसके अंदर भगवान कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने की योग्यताएं क्या होनी चाहिए, क्योंकि अभी अर्जुन बैठ गए चुप हो चुके हैं, तो अब ज्ञान लेना चाहते हैं ना भगवान से। तो भगवान चौथे अध्याय में बताते हैं कि, और हमें भी समझना बहुत आवश्यक है, और इस श्लोक के अनुसार कैसे अर्जुन ने तीन योग्यताएं बताई भगवान ने इस श्लोक में, चौथे अध्याय के श्लोक में, कैसे अर्जुन आज के श्लोक में जो संजय बता रहे हैं कि अर्जुन ने ये तीन योग्यताएं कैसे सिद्ध की ज्ञान प्राप्त करने के लिए, श्रद्धा, तत्परता और इंद्रिय संयम। तो ये चौथे अध्याय का श्लोक है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम आत्मसंयम तत्पर, कि तीन योग्यताएं श्रद्धावान, जो श्रद्धावान है, जब तक हमें भगवान श्री कृष्ण में श्रद्धा नहीं, वो कुछ ज्ञान अंदर नहीं जाएगा। सबसे पहले श्रद्धा होनी चाहिए कि ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है श्री कृष्ण, और तत्परता, उस ज्ञान को अर्जित करने की तत्परता होनी चाहिए। आप देखिए, बहुत से लोग कहते हैं हम श्रद्धा रखते हैं भगवान पे, लेकिन तत्परता नहीं है वो ज्ञान भगवान का अपने जीवन में उतारने के लिए। तो श्रद्धा के साथ तत्परता होनी चाहिए ज्ञान को अपने जीवन में उतारने के लिए, और उसके साथ साथ इंद्रिय संयम, क्योंकि जब तक इंद्रिय संयम नहीं, अर्थात यहां पर लाइफस्टाइल बताया गया है, इसलिए श्रील प्रभुपाद ने जो चार नियम दिए हैं, ये चार नियम शास्त्र में इन सब का वर्णन है। ऐसा नहीं कि प्रभुपाद सोचे चलो ये लोग बहुत नशा कर रहे हैं तो इनको बोलते नशा बंद करो, ये लोग बहुत मांस खाते हैं तो मांस खाना बंद करो, ये ऐसा नहीं कि प्रभुपाद को कांदा लहसुन अच्छा नहीं लगता था इसलिए बोल दिया चलो मत खाओ, कोई भी इस्कॉन में कोई भी नहीं खाएगा, चाय कॉफी इसलिए बनने की क्योंकि उनकी पत्नी ने वो चाय कॉफी का जो कांड किया था कि ये जो मेरी पत्नी थी उसने वो चाय के पीछे मेरी भागवतम को बेच दिया, तो चाय मैं किसी को नहीं पीने दूंगा, ये सब कोई कारण नहीं था। कई बार लोग बोलते हैं क्योंकि प्रभुपाद की पत्नी चाय में इतनी आसक्ति, इसलिए प्रभुपाद ने प्रण लिया था कि सबकी चाय छुड़ा के रहूंगा पूरे संसार में। या ऐसा नहीं था किसी चाय कंपनी ने प्रभुपाद को कोई अपराध कर दिया था तो उसके बदला लेने के लिए। एक लाइफस्टाइल प्रभुपाद ने, एक जीवन शैली प्रभुपाद ने दी। क्योंकि यहां पर जो कुछ प्रभुपाद ने दिया है वो सब शास्त्र पर आधारित है, भली भांति शास्त्र को कोट करना है जो बता रहे हैं। तो यहां पर इंद्रिय संयम, चार नियम है क्या इंद्रिय संयम? तो इंद्रिय संयम जब तक नहीं है तब तक वो कीर्तन और श्रवण का कोई सब्सटेंस नहीं रहेगा। इसलिए 16 माला के साथ ये जो चार नियम दिए हैं, ये चार नियम वो 16 माला को एक सब्सटेंस देते हैं, कुछ तथ्य, कुछ तत्व बनता है उसका। इसलिए हम देखें तो इस श्लोक में, आज के श्लोक में अर्जुन कैसे इन योग्यताओं को सिद्ध कर रहे हैं। कौन सी योग्यता को? ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता को, चौथे अध्याय के उस श्लोक के अनुसार। श्रद्धा, श्रद्धा का ऋषिकेश से क्या संबंध है? समर्पण। अर्थात अर्जुन अपनी सारी इंद्रियों को अब ऋषिकेश के सामने ऐसे रख दिए कि आप जो मेरी इंद्रियों के, मेरे मन के, मेरी बुद्धि के, मेरे इस शरीर रूपी रथ के भी आप सारथी, केवल इस रथ के नहीं, मेरे शरीर रूपी रथ के भी आप सारथी। तो अर्जुन ने अपनी श्रद्धा दिखाई, तो इसलिए संजय ऋषिकेश शब्द के द्वारा अर्जुन की श्रद्धा भगवान में कितनी है वो बता रहे हैं। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं? तत्परता, तत्परता का संबंध न योत्स्य से कैसे है? न योत्स्य याद है आपको अर्थ क्या? युद्ध नहीं करूंगा। अर्थात अर्जुन ये दिखा रहे हैं कि मैं आपके श्रवण के समय और कुछ नहीं करने वाला। आप जो अभी सुनाने वाले हैं तो मैं और कुछ नहीं करने वाला। अर्थात ये समझना चाहिए कि एक श्रोता को श्रवण करते समय इधर उधर की कुछ चीजें नहीं करनी चाहिए कि चल रहा है फोन पे भी वीडियो गेम, ये वो कुछ फोन कॉल चल रहा है, कुछ ये वो, या 16 माला भी पूरा हो रहा है, चल रहा है ये तो, डेढ़ घंटा तो इनका रेडियो चलता रहता है तो मेरा 16 माला का टाइम अच्छा बीतेगा यहां पे। नहीं, अर्जुन यहां पर अपनी तत्परता दिखा रहे हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के मुझे केवल। अब देखिए इमरजेंसी देखिए अर्जुन की, आप कल्पना कीजिए 64 करोड़ योद्धा सब अर्जुन की तरफ देख रहे हैं और अर्जुन ने किसी की परवाह नहीं करते हुए बैठकर भगवान के मुख से भगवद गीता सुनी और कुछ नहीं किया अर्जुन ने। ऐसा नहीं कि बीच में भूख लगी तो थोड़ा ब्रेक होना चाहिए, कुछ नाश्ता वास्ता लेके आओ, कुछ आप सुनाते रहो तो खाता रहूंगा पॉपकॉर्न। लोग ना पिक्चर देखते समय ये सब कुछ चलता रहता है यहां वहां। एकाग्रचित होकर अर्जुन श्रवण करें, तो तत्परता अर्जुन ने दिखाई कि मुझे अब और कुछ नहीं करना है, केवल आपकी वाणी सुननी। इंद्रिय संयम गुढ़ाकेश। तो इस श्लोक में यदि हम देखें एवं उक्त्वा ऋषिकेश गुढ़ाकेश परंतप न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तुष्णिम बभूवः, कि ये तीन शब्दों के द्वारा अर्जुन ने सिद्ध किया कि कैसे मैं ज्ञान प्राप्त करने के योग्य हूं। ये संजय इस श्लोक के द्वारा हम सबको बता रहे हैं कि यदि हमें भी अर्जुन के पद चिन्हों पर चलते हुए भगवद गीता का ज्ञान अपने जीवन में उतारना है तो श्रद्धा होनी चाहिए। किसमें? ऋषिकेश में। ऋषिकेश में श्रद्धा होने का अर्थ है हमारा मन, हमारी इंद्रियां, हमारी बुद्धि, इन सब के स्वामी वो है। और तत्परता का अर्थ है शारीरिक रूप से कैसे अर्जुन और कुछ नहीं कर रहे थे, चुप हुए, बैठ गए, सुन रहे हैं केवल। इंद्रिय संयम का अर्थ है कैसे आलस्य को जीतना। तो फिर से यदि हम इन उक्त्वा शब्द का संबंध यदि फिर से देखें तो तुष्णिम और न योत्स्य, इन दोनों के द्वारा चुप हुए और युद्ध न करने के बहाने या दिखाने के द्वारा अर्जुन ये बता रहे हैं कि मैं केवल श्रवण करना चाहता हूं। तो अंततः ये प्रश्न है कि साधना में शरीर का योगदान कितना होना चाहिए। अक्सर हम ये बोलते हैं ना कि मन मना भव मद भक्तो, भगवान में मन लगाओ, मंत्र हमारे मन को तारने वाला है, ये महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो यदि ये प्रश्न पूछा जाए कि साधना में शरीर का कुछ योगदान होता है, हाँ या ना, ठीक है। सबसे पहले यदि हम श्रवण को लें, हमारी साधना में यदि श्रवण को लें तो श्रवण में शरीर का क्या योगदान है? अटेंटिव लिसनिंग, ध्यान से सुनना, अर्थात यहां पे शरीर हम केवल ले रहे हैं, ध्यान से सुनना तो मन हो गया, ध्यान से सुनना मन हो गया ना। श्रवण का अर्थ है कि ऑडिबली सुनना, यदि कुछ समझ में नहीं आए तो पूछना। ऐसा नहीं कि बहुत से शब्द समझ में नहीं आ रहे तो चलेगा ना, बैठे तो थे, कुछ तो घुसा अंदर। और शारीरिक रूप से श्रवण या शरीर श्रवण में कैसे लगाया जाए, एक तो शरीर को लाना है, जहां पर श्रवण चल रहा है, क्योंकि श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे थे तो बड़े बड़े लोगों से ट्रैवल कर बड़े बड़े ऋषि मुनि अगस्त्य अष्टावक्र नारद मुनि व्यासदेव ये सब आए थे वहां पर, शारीरिक रूप से बैठे थे। ऐसा नहीं कि वहां पे कोई रेडियो एफएम लगा दिया कि वहां का ट्रांसमिशन करना, इधर हम बैठे बैठे इधर सुनते हैं, ब्रह्मा जी मैं इधर बैठे बैठे सुनूंगा ब्रह्मलोक में। ये सभी शारीरिक रूप से वहां पर उपस्थित हुए थे। अर्थात सबसे पहले अर्जुन भी दिखा रहे हैं और हमें भी ये समझना है कि हमें जहां पर सत्संग हो रहा है तो अपने शरीर को ले जाना है वहां पे शारीरिक रूप से। ऐसा नहीं कि पति ने पत्नी को भेज दिया, मुझे बता देना बाद में क्या बताया लेक्चर में। और किस तरीके से हम अपने शरीर का योगदान श्रवण में लगा सकते हैं? हाँ नहीं नहीं नहीं, हम शरीर को कैसे शरीर का योगदान श्रवण में लगा सकते हैं? गलत कुछ नहीं सुन के। ऐसा नहीं कि 3 घंटे की कोई पिक्चर देख के आए हैं, अभी चलो थोड़ा उसको साफ करने के लिए बैठते हैं, 6 से 9 का शो हरे कृष्णा मंदिर में। तो होता क्या है कि जितना हम प्रजल्प या ग्राम्य कथा सुनते हैं इस कानों से, उतना ज्यादा हमारे श्रवण में बाधा आती है। तो श्रवण का अर्थ ये नहीं कि आप मंदिर में आते हो तो क्या सुनते हो, बस उस पर आपका श्रवण निर्भर है। मंदिर के बाहर जाके क्या सुनते हो, वो बहुत कुछ निर्भर करता है कि आप मंदिर में कितना सुनोगे ध्यानपूर्वक। तो कई बार लगता है कि हाँ इतना श्रवण किया, 20 साल से कितना प्रोग्राम अटेंड किया, कितने लेक्चर अंदर गए होंगे और बाहर भी गए होंगे। तो इसके साथ साथ ये देखना है कि ये हमारे श्रवण की विधि सत्संग के पश्चात कहां लगाई जा रही है, क्या हम सुन रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारी आदतें शारीरिक आदतें निर्भर करती हैं कि हम श्रवण ठीक से कर पाएंगे कि नहीं। जैसे देखिए, अक्सर रात के प्रोग्राम लोग बहुत अटेंटिवली सुनते हैं आजकल कलयुग में। यदि हम प्रवचन सुबह 6 बजे रखें, वेडनेसडे प्रोग्राम 6 बजे सुबह, तो सबको बिस्तर लाना पड़ेगा। अर्थात आजकल सबकी दिनचर्या या रातचर्या, जो भी दिन रातचर्या, वो ऐसी हो गई है कि जो समय हमारे श्रवण कीर्तन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, उस समय हमें आलस्य आता है। इसलिए ये मत समझिए कि जो हम शाम को इतना प्रोग्राम रखते हैं, ये सब शुद्ध शास्त्र के अनुसार है। शुद्ध शास्त्र के अनुसार अब तक हम सब सो जाने चाहिए थे। तो होता है कई बार, इस समय भी होता है। तो रात को देर से जगना, बहुत ज्यादा ठूस लेना खा खा के पूरे दिन भर, या ऐसे ऐसे काम करना दिन भर जिसके वजह से हमारे श्रवण में हमको ध्यान ना लगे, वो सब हम इंडिविजुअली ट्रांसलेट कर सकते हैं कि हम लोग अपने इंडिविजुअल दिन में क्या क्या करते हैं शरीर से, जो हमारे श्रवण में सहायक हो सकता है या बाधा बन सकता है। दैट इज व्हाट इट इज। तो श्रवण जप के लिए भी वो सारे नियम है कि हम अपनी जिह्वा से, ऐसा नहीं कि 16 माला के बाद फिर जिह्वा कुछ भी बोले या कुछ भी खाए, महाप्रसाद खाने के बाद फिर कुछ भी खाए या कुछ भी खाने के बाद महाप्रसाद खा लिए तो हो जाएगा उसका, वो नलीफाई हो जाएगा। जैसे बंबई में एक हमारे भक्त हैं, उनके रिश्तेदार, वो जानते थे कि चार नियम के बारे में सुना था, तो वो करते क्या, उनके घर में राधा कृष्ण की मूर्तियां, तो कृष्ण के चरणों पर तुलसी अर्पित करते और वो तुलसी को बॉक्स में बंद करके ले जाते पार्टियों में। अब देखिए कलयुग में लोग कहां कहां तक पहुंच सकते हैं। कई चाय में तुलसी डालते हैं कि महाप्रसाद भगवान की तुलसी, तो वो भी शुद्ध हो गई चाय भी, तो मैं जो पी रहा हूं शुद्ध महाप्रसाद भगवान का। तो हम हमारी इंद्रियों से दिन भर क्या करते हैं वो निर्भर करेगा कि, मतलब अर्थात हमारे शरीर से हम दिन भर क्या करते हैं वो निर्भर करेगा कि श्रवण कीर्तन के समय मन लगता है कि नहीं, इसका ये अर्थ है। और अंततः हमारी साधना का निचोड़ क्या है, शरणागति। अब देखिए, क्या भगवान ने भगवत गीता में शरीर को भगवान की सेवा में लगाने के लिए कहा है या नहीं कहा है, या भगवान ने केवल कहा है अर्जुन को मन लगाओ? हम यदि वो प्रसिद्ध श्लोक लें, मन मना भव मद भक्तो मद याजी, याजी का अर्थ क्या होता है? अर्चना, अर्चना, यजन, अर्चना, अर्चना का अर्थ डिटी वर्शिप, अर्थात शरीर से डिटी वर्शिप होता है। माम नमस्कुरु, नमस्कार, अर्थात शरीर को डालो थोड़ा नीचे, दंडवत करो भगवान के सामने, अच्छा है, बैक पेन दूर होता है उससे। तो भगवान यहां पर इस एक श्लोक में मन के बारे में भी बोल रहे हैं कि मन को लगाओ, यदि मन को भी नहीं लगा सकते तो लाओ अपने शरीर को मंदिर में, लेटाओ उसको भगवान के सामने, नतमस्तक हो, भगवान की अर्चना करो, किसी न किसी प्रकार से अपने शरीर को भी लगाओ, मन को भी लगाओ, शरीर को भी लगाओ, भगवान बोल रहे हैं। इसलिए भगवान ने गीता में इंद्रियों को लगाने के लिए भी कहा है, मन को भी लगाने के लिए कहा है, बुद्धि को भी लगाने के लिए कहा है, कि अपनी बुद्धि से, अपने मन से और अपनी इंद्रियों से। ये इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि अर्जुन यहां पर अब अपने शरीर को भगवान के सामने रखे हैं कि भगवान आप अब मुझे बताइए, मैं ये जो कान है केवल इन्हीं को आपकी सेवा में भी लगाने वाला हूं, मैं और कुछ नहीं करने वाला, न योत्स्य इति गोविंद, कहने का ये अर्थ है। जब अर्जुन बोल रहे हैं न योत्स्य इति गोविंद, इसका अर्थ है कि अब मैं केवल श्रवण करूंगा हे गोविंद, ये अर्जुन बता रहे हैं। तो इन सब के द्वारा संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण का क्या स्तर है जो अब गीता सुनाने वाले हैं, और अर्जुन का क्या स्तर जो गीता सुनने वाले हैं। अर्जुन की योग्यताएं हमने देखी चौथे अध्याय के अनुसार, जो भगवान स्वयं बोले हैं कि श्रवण की या ज्ञान प्राप्त करने की योग्यताएं क्या होनी चाहिए, श्रद्धा, तत्परता और इंद्रिय संयम। और वो अर्जुन ने इस एक श्लोक के द्वारा संजय बता रहे हैं कि कैसे अर्जुन ऋषिकेश के मुख से सुन रहे हैं, श्रद्धा पूर्वक स्वयं इंद्रिय संयमी गुड़ाकेश और तत्परता उन्होंने दिखाई, अब और कुछ मैं नहीं करूंगा, आगे के एक घंटा या जो भी मैं आपके मुख से भगवद गीता सुनने वाला हूं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? अब अगला श्लोक जो है, मेरे ख्याल से अगले हफ्ते मैं नासिक में नहीं हूं, तो सुदामा प्रभु आ रहे हैं बंबई से। नहीं, वो बहुत महत्वपूर्ण उनका सेमिनार होता है, जोर से बोलिए आप। वो श्रद्धा के ऊपर शायद बोल रहे हैं, तो 3 दिन का उनका सेमिनार होगा, वेडनेसडे से, हाँ 13, 14, 15। और उसके अगले हफ्ते फिर हम जो 10वां श्लोक है जिसमें संजय बता रहे हैं कि भगवान मुस्कुराए, तो इतना ही श्लोक है, भगवान मुस्कुराए, तो उसमें हमारी चर्चा होगी भगवान के मुस्कान के ऊपर। सो दैट वेडनेसडे इज डेडिकेटेड टू द स्माइल ऑफ कृष्णा। तो यदि आपको भगवान क्यों मुस्कुराए, कैसे मुस्कुराए ये जानना है, तो 10वां श्लोक सुनने के लिए उपस्थित होना, इसी समय इसी जगह। हरे कृष्णा। और कोई अनाउंसमेंट्स?